माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरावनजारी यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदनन्दन भज जनरञ्जन यमुनतीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय प्रभुपद जय प्रभुपद विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतसि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरण अरविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतसि श्रीमद् डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य वरुणित्या आनंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय अंतरा श्रीमद्भागवतम की जय निताय गौर प्रेमानंदे ऑल लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल लोरिस्ट असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज एंड ग्लोरीज श्री गुरु एंड श्री गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आज का कक्षा हिंदी में रहेगा, पहले मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा फिर उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 9th chapter, भीष्मदेव का भगवद्धाम जाने का, और टेक्स्ट 30। तदा उपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्तसंगा मन आदपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपते चतुर्भुजे पुरः स्थिते मीलितदृग्व्यधारहते तदोपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्तसंगं मन आदपूरुषे कृष्णे लसत्पीतपते चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् तदोपसंहृत्य गिरः सहस्राणि विमुक्तसंग मन आदिपुरुषे कृष्णे लसत्पीतपते चतुर्भुजे पुरस्थिते मीलितदृग्व्यधारयत् माताजी तदा एट दैट टाइम उपसंहृत्य विड्रॉइंग गिरः स्पीच सहस्राणि भीष्मदेव हु वाज एक्सपर्ट इन थाउजेंड्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स विमुक्त संगम कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम एवरीथिंग एल्स मनः mind adi purushe onto the original personality of godhead कृष्णे अंटु कृष्णा लसत पीतपते डेकोरेटेड विथ येलो गार्मेंट्स चतुर्भुजे अंटु द फोर हैंडेड ओरिजिनल नारायण पुरह जस्ट बिफोर स्थिते स्टैंडिंग अमिलिता वाइड स्प्रेड दृक् विजन विधार्यता फिक्स्ड ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय हिज डिवनेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद देर अपॉन दैट मैन हू स्पोक ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स विद थाउजेंड्स ऑफ मीनिंग्स एंड हू फॉट ऑन थाउजेंड्स ऑफ बैटल फील्ड्स एंड प्रोटेक्टेड थाउजेंड्स ऑफ मेन स्टॉप्ड स्पीकिंग एंड बींग कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल बॉन्डेज withdraw his mind from everything else and fixed his wide open eyes upon the original personality of Godhead Sri Krishna, who stood before him four-handed, dressed in yellow garments that glittered and shined purple. In the momentous hour of leaving his material body, Bhishma Dev set the glorious example concerning the important function of the human form of life. The subject matter which attracts the dying man becomes the beginning of his next life. Therefore, if one is absorbed in the thoughts of the Supreme Lord Sri Krishna, he is sure to go back to Godhead without any doubt. This is confirmed in Bhagavad Gita. So, idhar Prabhupada bata rahe hain ki Bhishma Dev bahut acha udaharan prastut kar rahe hain kyunki jo hamara vichar rehta hai mrityu samay ke wahi hamara अगला जन्म का शुरुआत होता है उस विचार से ही. तो इधर भीष्मदेव बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं और प्रभुपाद भगवद्गीता का आठवां अध्याय 5 से 15 श्लोक का अनुवाद बताते हैं. उसमें व्हाटएवर एंड हूएवर एट द टाइम ऑफ डेथ क्विट्स हिज बॉडी रिमेंबरिंग मी अलोन एट वंस अटेन माय नेचर फॉर दिस देयर इज नो डाउट. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Therefore, Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna and at the same time carry out your prescribed duties of fighting with your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. He who meditates on the Supreme Personality of Godhead, his mind completely engaged in remembering me, undeviated from the path, O Partha Arjuna, is sure to reach me. One should meditate upon the Supreme Person as the one who knows everything, as he who is oldest, who is the controller, who is smaller than the smallest, who is the maintainer of everything, who is beyond all material conception, who is inconceivable and who is always a person. He is illuminous like the sun and being transcendental is beyond this material nature. One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. Persons learned in the Vedas who utter Omkar and who are great sages in renounced order enter into Brahman. Desiring such perfection, one practices celibacy. I shall now explain to you this process by which one may attain salvation. The yogi is situated in that of detachment from all sensual engagement, closing all the doors of senses and fixing the mind on the heart and life air at the top of head, one establishes himself in yoga. After being situated in this yoga practice and vibrating the sacred syllabus Om, the supreme combination of letter, if one thinks of the Supreme Personality of God and quits his body, he will certainly reach the spiritual planets. For one who remembers me without deviation, I am easy to obtain, O son of Partha, because of his constant engagement in devotional service. After attaining me, the great souls who are yogis in devotion never return to this temporary world, which is full of miseries because they have attained the highest perfection. Bhishma Dev attained the perfection of quitting his body at the will and was fortunate enough to have Lord, the object of his attention, personally present at the time of death. He therefore fixed his open eyes upon him. He wanted to see Krishna for a long time out of his spontaneous love for him. Because he was a pure devotee, he had very little to do with the detailed performance of yogic principles. Simply bhakti yoga is enough to bring about perfection. Therefore, the ardent desire of Bhishma Dev was to see the person of Krishna, the most lovable object, and by the grace of Lord Sri Bhishma Dev, had this opportunity at the last stage of his breathing. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Melitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavamsya Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakanvitamsya Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanuste Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpa Tarubhyascha Kapa Sindhu Bhyevacha Atitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare तो आज हम किस प्रकार से विश्वदेव ने अपना शरीर छोड़ा तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है तो आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ ताकि मैं भागवतों का गुणगान करूँ मेरा हृदय का शुद्धिकरण के लिए तो चार विषय के ऊपर आज चर्चा करेंगे किस प्रकार से पहला कुक्षणम भीष्मदेव ने किस प्रकार युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना दिया है और किस प्रकार से कृष्ण उसके सभी कारणों के कारण किस प्रकार से भीष्म ने सौं जाते हैं एंड और क्यों भीष्मदेव ने पांडवों के विरुद्ध में युद्ध किया है और सबसे महत्वपूर्ण विषय आज का चर्चा हम करेंगे किस प्रकार से भीष्मदेव को महाजन हम मानते हैं उनको क्यों महाजन बोला जाता है क्या क्या कारण है तो और अंतिम प्रश्न है कि किस प्रकार से उनका जीवन उन्होंने व्यतीत किया है तो पहला प्रश्न था किस प्रकार से उन्होंने युधिष्ठिर महाराज कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद बहुत ही दुखी थे कि उनके वजह से इतने सारे लोगों का मृत्यु हुआ है उनको राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उन्होंने इतने सारे लोगों का मृत्यु का कारण बने तो फिर कृष्ण भगवान उनको समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन व्यासदेव भी समझाने का प्रयास करते हैं लेकिन मानते नहीं युधिष्ठिर महाराज तो कृष्ण पांडवों को लेके भीष्मदेव के पास जाते हैं तो भीष्मदेव कुछ कारण बताते हैं कि पहला चीज़ बताते हैं कि युधिष्ठिर महाराज आपका आपका जो मार्ग है हर समय सही है क्योंकि विप्र धर्म अच्युताश्रय आपने कभी गलती किया नहीं क्योंकि आप जो भी कार्य करते हैं आप ब्राह्मणों का और धर्म का और भगवान अच्युत का आपने आश्रय लिया है तो आपने जो भी किया है वो सही किया है आपका इस कारण में कुछ गलती नहीं है फिर बताते हैं कि किस प्रकार से सभी चीज़ कर्म के काल के वजह से होता है तो बताते हैं कि किस प्रकार से एक कहानी है एक ब्राह्मण विधवा थी उनको एक छोटा लड़का था तो बहुत अच्छा भगवान का सेवा करती थी और उसका कुछ सहारा नहीं था और अच्छी सेवा है उनका भाव सब कुछ अच्छा था और लेकिन एक बार उनका लड़का जंगल में गया भगवान का सेवा के लिए फूल लेके आने के लिए लेकिन एक सांप ने उसको काट लिया और वो उनका लड़का मर जाता है वो बहुत दुखी हो जाती है और सारे लोग भी दुखी हो जाते हैं कि क्यों ऐसा हो गया उधर एक शिकारी था, उसने देखा कि इस सांप ने उसको काट दिया, तो उसको भी थोड़ा दुख लगा कि इस ब्राह्मण स्त्री का छोटा लड़का मर गया। तो उन्होंने बोला, देखो ये जो सांप ने काटा उसको मैं लेके आ सकता हूँ, तो क्योंकि मुझे उसका मंत्र पता है। तो वो मंत्र पढ़ते हैं तो तुरंत वो सांप उधर आ जाता है। तो बोलते, इसने आपका लड़के को काटा है तो उसके वजह से मर गया, अभी इस सांप को क्या करना है बताइए। तो औरत बोलती है, इसको मारने से मेरा बेटा वापस आएगा क्या? बोलते, नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा तो सांत्वना मिलेगा जिसके वजह से हुआ है, उसको हमने मारा। तो बोलते हैं, नहीं, लेकिन वो सांप बोलता है, लेकिन वो मेरा गलती नहीं है, क्योंकि उसका मृत्यु आया इसलिए मैं आई। तो फिर मृत्यु को बुलाते हैं, मृत्यु आके बोलता है, एक्चुअली उसका कर्म था इसलिए मैं आया। कर्म आता है, कर्म बोलता है उसका काल आया था इसलिए मैं आया। तो अल्टीमेटली सर्व काल कृतम मन्ये, विष्णुदेव बोलते हैं जो भी हमारे जीवन में हो रहा है वो काल का प्रभाव है। जनरली क्या करते हैं हम लोग, किसी को कुछ दोष नहीं देना चाहते तो क्या बोलते हैं, टाइम ऐसा है, अभी क्यों दुनिया ऐसा है, कलयुग है। मतलब एक व्यक्ति को दोष नहीं दे रहे, कलयुग ऐसा है, अभी गवर्नमेंट ऐसा है, ये देश ऐसा है, वो देश ऐसा है, पूरा प्रभाव किसके ऊपर डालते हैं हम लोग, कोई व्यक्ति नहीं है, वो बोलते हैं कलयुग ऐसा है, अभी क्या करेंगे। तो सर्व काल कृतम मन्ये, टाइम के ऊपर डाल देते हैं। तो कालोस्मि लोक क्षय कृत, वो काल कौन है? भगवान बोलते मैं हूँ। तो विष्णुदेव बोलते हैं, देखो आपका कुछ गलती नहीं है और टाइम ऐसा है, क्योंकि बोलते हैं आपका जीवन में इतना तकलीफ हुआ उसका क्या कारण है, हालांकि आप विप्रधर्माच्युताश्च, वो काल का प्रभाव है। और बोलते हैं कि आपको इतना दुख हुआ उसका कारण भगवान है, ये युद्ध होने का कारण भी भगवान है, और आपको राजगद्दी में बैठने का कारण भी भगवान है, इसलिए आप आराम से बैठ जाओ उधर और पालन करो। तो इस प्रकार से उनको सांत्वना देते हैं और बोलते हैं, आप जो ये कृष्ण समझ रहे हैं आपका रिलेटिव है, आपका रिलेटिव नहीं है, स्वयं भगवान है। ये मूल नारायण है, इस प्रकार से बताते हैं कि विष्णुदेव। इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हैं। और दूसरा कि क्यों भीष्मदेव इस प्रकार से पांडवों के विरुद्ध में उन्होंने युद्ध किया, क्योंकि वो कृष्ण का इच्छा था। कृष्ण भगवान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताना चाहते हैं कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, भीष्मदेव जितना भी बड़ा व्यक्ति हो, आप भगवान के व्यतिरिक्त काम करेंगे तो सफल नहीं हो सकते। तो क्योंकि भीष्मदेव इतने शक्तिशाली थे कि जब दुर्योधन को पता चला कि भीष्मदेव गिर गए युद्ध में, तो दुर्योधन बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि दुर्योधन का पूरा जो उसका कॉन्फिडेंस था वो सिर्फ भीष्मदेव के ऊपर था कि यह है तो मैं जीत जाऊंगा। लेकिन जब भीष्मदेव गिर जाते हैं, दुर्योधन भी गिर जाते हैं बेहोश होकर, क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि भीष्मदेव गिर जाएंगे। तो इतने शक्तिशाली थे, लेकिन कृष्ण बताना चाहते हैं कि कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के एक और मेरे खिलाफ जो कार्य करते हैं कभी सफल नहीं हो सकते। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बताना चाहते हैं। तो और अभी देखेंगे कि किस प्रकार से भीष्मदेव, क्योंकि हर महाजन एक एक बहुत अच्छा विषय के ऊपर वो मतलब एग्जाम्पल सेट करते हैं। अभी बलि महाराज ने किस प्रकार से भगवान को शरणागत होना इसको सिखाया, इसलिए वो महाजन हो गए। प्रहलाद महाराज कैसे भगवान के ऊपर आधारित रहना हर समय में, तो उसके द्वारा वो महाजन बने। और भीष्मदेव महाजन है क्योंकि उन्होंने सिखाया किस प्रकार से हमको अपना शरीर छोड़ना चाहिए। तो जब हरिदास ठाकुर भी अपना शरीर छोड़ते हैं, सभी लोग बोलते हैं भीष्मदेव ने भी इस प्रकार से शरीर छोड़ा था। मतलब हाइएस्ट एग्जाम्पल शरीर छोड़ने का भीष्मदेव है, तो इसलिए महाजन है। तो इस श्लोक में, श्लोक में कृष्ण प्रपद बताते हैं कि भीष्मदेव ने सबसे बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया किस प्रकार से शरीर छोड़ना चाहिए। तो थोड़ा भीष्मदेव का जीवन में देखेंगे कि क्या किस प्रकार से उनके जीवन गुजरता है कि जब पांडु मर जाते हैं तो सारे पांडव को भीष्मदेव अच्छा से देखभाल करते हैं क्योंकि वो छोटे थे, और लेकिन ज़्यादा मदद नहीं कर पाते भीष्मदेव, हालांकि उनको क्योंकि कोई किसी को भी युधिष्ठिर जैसा कोई इतना नम्र और आज्ञाकारी पोता होगा तो बहुत आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि जनरली अच्छे बच्चों को देखते हैं तो टीचर आसक्त हो जाते हैं। अभी उनका खुद का पोता है तो कितना आसक्त होना चाहिए, वो भी युधिष्ठिर जैसा कोई लड़का होगा और भीष्मदेव को बहुत ही आसक्त हो जाते हैं। लेकिन दुर्योधन और धृतराष्ट्र और शकुनी युधिष्ठिर को हर समय मारने का प्रयास करते थे और भीष्मदेव कुछ कर नहीं पाते थे, उनको बहुत दुख लगता था लेकिन क्योंकि उनके हाथ में कुछ पावर नहीं था। और इस प्रकार बहुत सारे जब लाक्षाग्रह में हुआ है उनको वनवास भेजा गया है, कुछ कर नहीं पाते। जब द्रौपदी का अपमान होता है उस समय भी भीष्मदेव कुछ बोलते नहीं है। जब पांडव भीष्मदेव के पास आते हैं कृष्ण के समय, ये सिचुएशन में जब युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भीष्मदेव को आप धर्म के बारे में बताइए, द्रौपदी हंसती है। तो फिर भीष्मदेव देख के द्रौपदी को बोलते हैं मुझे पता आपने क्यों हंसा है, क्योंकि आपको लगा कि मैं धर्म के बारे में क्या बताऊंगा, क्योंकि जब आपका अपमान हुआ मैंने कुछ बात नहीं किया। तो भीष्म बोलते हैं कि क्योंकि मैंने दुर्योधन और धृतराष्ट्र का खाना खाया है उसके वजह से मेरा खून है दूषित हो गया, इसलिए मेरा मन दूषित था, इसलिए मैं धर्म का ठीक से पालन नहीं कर पाया। अभी जो अर्जुन का जो बाण से मेरा सारा शरीर पियर्स हुआ है तो पूरा खून निकल गया, अभी कुछ बुरा खून निकला है नहीं, तो मेरा शरीर अभी शुद्ध है इसलिए मैं धर्म के बारे में बोल सकता हूँ। तो फिर और एक चीज है, क्यों भीष्मदेव क्योंकि वो वीर रस में हैं इसलिए वो कृष्ण के साथ युद्ध करना चाहते थे, तो ये भी एक कारण है क्योंकि उन्होंने इस प्रकार से किया। अभी भीष्मदेव का जो उनके इतने बड़े भक्त है इसका किसी को, ठीक है सभी को पता है महान महान व्यक्ति हैं, धर्म जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनका जो भगवान के प्रति कितना भक्ति है वो कभी हम कुछ लीला नहीं सुनते। तो भीष्मदेव को हर समय पांडवों के अगेंस्ट ही था उनको, क्योंकि वो दुर्योधन के पार्टी में थे। तो युद्ध हुआ तो भी उन्होंने जीवन भर पांडवों के प्रति उनको बहुत प्रेम था, लेकिन जीवन का अंत में उनको जिनसे बहुत प्रेम है उनसे ही लड़ाई करना पड़ा। तो ये बहुत संघर्ष होता है मन में, और लेकिन युद्ध से पहले ही दुर्योधन को बोलते हैं कि हर रोज मैं 10,000 पांडवों के सेना को मारूंगा। तो 8 दिन ऐसे गुजर जाता है, 7-8 दिन। 8 दिन के बाद दुर्योधन आके बोलते हैं कि आप लोग को मार रहे हैं लेकिन एक पांडव को भी मारा नहीं अभी तक, तो उनको बहुत अपमानित करते हैं। तो फिर भीष्म बोलते हैं ठीक है ये 5 बाण ले लो, कल मैं उनको मार दूंगा। दुर्योधन बोलते हैं मुझे दे दीजिए। तो मतलब भीष्मदेव को उस समय भी अपमान सहनना पड़ा, उसके बाद उन्होंने सोचा ठीक है, लेकिन उनका क्लॉज था मतलब स्टार अप्ले, ये 5 बाण से पांडवों को मारूंगा और स्टार रखते नीचे कृष्ण जाते हैं। तो फिर कृष्ण उस समय भीष्म को उनका टेस्ट होता है कि कृष्ण अर्जुन को भेजते हैं और बाण ले लेते हैं दुर्योधन से। तो फिर भीष्मदेव को जब समझ में आता है तो उन्होंने सोचा ठीक है अभी कृष्ण भी इतना चैलेंज दे रहे हैं मुझे, तो मुझे भी कुछ करना चाहिए बहुत बड़ा चीज़। तो उन्होंने निश्चय किया कि आज अर्जुन मारे जाएंगे नहीं तो कृष्ण को अस्त्र उठना पड़ेगा। अभी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने पांडवों को अभी तक कुछ किया नहीं, उन्होंने मतलब ज़्यादा सहाय नहीं कर पाए, अभी उनको ही इतना दूर तक जाना पड़ा कि उनको मारने तक उनको जाना पड़ा ताकि कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। मतलब कृष्ण किसी को टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट करते हैं, मतलब बहुत अंत तक, मतलब अर्जुन का सिचुएशन था कि उनको भी मारना था, भीष्म को, द्रोण को, उनको बहुत दुख लग रहा था, इसलिए उन्होंने बोला मैं नहीं मार सकता। तो फिर कृष्ण ने बोला, कृष्ण ने पूरा भगवद गीता का ज्ञान दिया। अभी भीष्म को भी उसी सिचुएशन, जनरली कैसे होता है कि माता पिता को बच्चों के ऊपर ज्यादा आसक्त होता है, बच्चों को माता पिता से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही निस्वार्थ से सेवा किया है, तो माता पिता को बच्चों के प्रति आसक्ति ज्यादा होता है, बच्चों का थोड़ा कम रहता है। तो मतलब भीष्म देव को पांडवों के प्रति आसक्ति बहुत था, लेकिन उनको ही मारना था। तो अर्जुन का जो सिचुएशन है, भीष्म देव का भी सिचुएशन था कि मुझे अपने पोतों को मारना है जिनके मैं कुछ सहाय कर नहीं पाया इतना साल से, अभी लास्ट में उनको सहाय कर सकता था, अभी तो उनको ही मारना पड़ रहा है। और किसको मार रहे हैं? अर्जुन को ही मार रहे हैं, और इतना ज्यादा युद्ध करते हैं। तो फिर अर्जुन हताश हो जाते हैं, तो कृष्ण रक्षा करने के लिए आते हैं। तो अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो फिर हाँ, जब अर्जुन कृष्ण को रोकते हैं, कृष्ण अपना चक्र उठाते हैं, तो फिर अगला दिन जब युद्ध होता है तो भीष्मदेव हार जाते हैं। तो पहली बार उनके जीवन में हार को देखना पड़ा भीष्मदेव को। तो एंड ऑफ द लाइफ, जीवन के अंत में क्या हुआ? हार गए। तो अभी ये श्लोक में बताते हैं कि उन्होंने बहुत हजारों हजारों युद्ध किया है, हजारों लोगों का रक्षा किया है, और बहुत सारे चीजों में उन्होंने बात किया है, तो लेकिन अंत में क्या हुआ? हार गए। तो क्योंकि वो परशुराम के साथ भी युद्ध किया तभी हारे नहीं, मतलब भगवान का शिक्तावेश अवतार के साथ भी युद्ध करके हारे नहीं, लेकिन इधर हारना पड़ा। और हार के क्या हुआ? पूरा उनका शरीर में बाण थे, और एक कोने में युद्ध के रणभूमि में थे, और इधर युद्ध चल रहा है। उन्होंने सोचा ठीक है, पूरा युद्ध होने तक, एक्चुअली वो मेन जो सूर्य का स्थिति है उसके लिए प्रतीक्षा कर रहे थे ताकि अपना शरीर छोड़ सकें। अभी उनका हो गया, युद्ध हो गया, और उनको साइड में रख दिया, कुछ सैनिकों को रखे होंगे उनको रक्षा करने के लिए, लेकिन अभी उन्होंने सोचा नहीं, अभी मेरा तो लाइफ हो गया, सिर्फ वो टाइम का वेट कर रहे। तो अभी एक्सपेक्ट नहीं किया कि भगवान आएंगे, मुझे देखेंगे मुझे, और मैं ज्ञान का उपदेश दूंगा, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया उन्होंने। वो सोचा मेरा जीवन हो गया, अभी भगवान का स्मरण करता हूँ। तो ये एक्चुअली भगवान का जो आदान प्रदान है अपने भक्तों से, लास्ट मोमेंट तक उनको ऐसा रखने के बाद, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं किया भीष्मदेव। तो भगवान फिर पांडवों को लेके जाते युद्ध होने के बाद। तो सोचिए भीष्मदेव क्या सोच रहे होंगे, अरे मेरा जीवन भर मैंने शादी भी नहीं किया, ये राज का रक्षा किया, और वो राज भी नहीं है, और जिनको मैं चाहता हूँ बहुत प्रेम से उनको भी कुछ कर नहीं पाया, और अंत में मेरा हालत क्या हुआ, मैं युद्ध रणभूमि में ऐसा पड़ा हूँ। तो ये एक्चुअली भीष्मदेव का सिचुएशन है उस समय, लेकिन वो हताश नहीं हुए, उन्होंने सोचा ठीक है ये भगवान का इच्छा है। तो ये एक्चुअली उनका बहुत ही महानता है। तो फिर उसको अभी भगवान उसके बाद उनका गुणगान करते हैं, फिर पांडवों को लेके जाते हैं। तो जब पांडव जाते हैं, सारे ब्रह्मांड के बड़े बड़े ऋषि मुनि सभी आ जाते हैं भीष्मदेव के पास उनको देखने के लिए। तब भीष्मदेव बहुत बहुत सारे विषयों के ऊपर युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देते हैं। तो पहले उनको सांत्वना देते हैं। अभी भीष्मदेव का क्यों महाजन है? क्योंकि किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन जिया है, और किस प्रकार से अपना शरीर छोड़ा है, और भीष्मदेव का जो भक्ति है उसके बारे में, और उन्होंने बताया किस प्रकार से भगवान को स्मरण करना चाहिए। तो इधर भीष्मदेव जब भगवान आते हैं, कृष्ण पहले युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देते हैं। जब सभी लोग आते हैं तो भीष्मदेव वेलकम करते हैं। अभी वेलकम करने के बाद गेस्ट आते हैं तो उनको कुछ देना पड़ता है। तो भीष्मदेव बोलते हैं कृष्ण को, सभी को अपने बातों से वेलकम करते हैं। अभी उनको देने के लिए कुछ नहीं था, तो कृष्ण को बोलते हैं कि भगवान मेरे विचार आपको दे देता हूँ, मेरा जो थॉट्स है उसको आपको गिफ्ट करता हूँ, गिफ्ट देना चाहिए। तो भीष्म से आई गिव माई थॉट्स टू यू। तो जनरली कैसे होता है दुनिया में, दो चीज़ें, लोग पहले अपने सुख और दुख और अपने भावनाओं में रहते हैं, इमोशंस में रहते हैं, तो पूरा दिन दौड़ते रहते हैं, जीवन भर दौड़ते रहते हैं और सोचते हैं कि मैं कितना महान हूँ, एंड देखिए मेरा एक्सपर्टीज देखिए, मेरा अचीवमेंट देखिए, मेरा सक्सेस देखिए और मैं कितना महान हूँ, इस प्रकार से अपना जीवन चलता रहता है। लेकिन जब थक जाते हैं क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो उसी प्रकार जब जीवन में हताश हो जाते, थक जाते हैं लोग, तो क्या सोचते हैं, मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति भी एक तरह का सोना है, सो जाने के बराबर है, थोड़ा डीप स्लीप है। तो लोग जब दिन में थक जाते हैं तो क्यों सो जाने का प्रयास करते हैं, और जीवन में थक जाते हैं तो मुक्ति प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अभी भीष्म देव ने मुक्ति के बारे में सोचा नहीं, जनरली ये दो चीज ही होता है, लेकिन भीष्म देव ने सोचा अरे अभी तो हो गया जीवन, अभी मुझे मुक्ति चाहिए। नहीं, भीष्म देव को मुक्ति नहीं चाहिए था, क्योंकि इतना अभी जीसस क्राइस्ट को लोग गुणगान करते हैं, क्योंकि उनको इधर एक खिला इधर एक खिला और दो पाँव में खिला और सर पे एक लगा के उनको सूली पे चढ़ा देते हैं। तो बोलते कितना उन्होंने कितना कष्ट किया। अभी भीष्मदेव का हालत देखिए, पूरा शरीर भर उनका शरीर में पूरा तीर लगा है, फिर भी वो अपने शरीर नहीं छोड़ा, ऐसे ही थे कितने बहुत सारे दिन ऐसे ही थे। और उसके बाद उन्होंने उपदेश भी दिया, अभी किसी को अभी मुझे एक छोटा खीला लग गया, अभी बोलेंगे भागवतम क्लास दो, मैं बोला पहले इसको निकालो, मुझे डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको ठीक होने के बाद मैं सोचता हूँ क्लास देना है या नहीं। तो एक कीला लगने से हम बैठ के क्लास नहीं दे सकते, तो पूरा शरीर में उनका तीर लगा है, बोलेंगे अभी भागवतम क्लास दो, और पूरा इतना अच्छा चेतना से वो भागवतम क्लास देते हैं भीष्मदेव। और किसको देते हैं, ब्रह्मांड के सारे ऋषि मुनि और युधिष्ठिर महाराज और भगवान स्वयं है उधर देते हैं। तो ये एक्चुअली उनका ग्रेटनेस, इस सिचुएशन में भी उनका चेतना इतना प्योर था। तो प्रभुपाद भी जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो प्रभुपाद का जो मांस कुछ नहीं था, जो स्किन है डायरेक्टली बोन को टच हो रहा है, जो स्किन बोन को टच होता है तो बहुत दर्द होता है, बहुत। किसी का कभी चोट लग गया तो डायरेक्ट बोन दिखता है, कोई इसको टच करते हैं तो इतना चिल्लाते हैं। जिनको बोन कैंसर होता है तो डॉक्टर बताते हैं कि बोन कैंसर सबसे बड़ा दुखदाई मतलब होने का कारण होता है। तो जिसको बोन कैंसर होता है मतलब बोन के अंदर, तो उसके लिए बोन को आपको छेदना होता है। तो उनको जब बोन को छेदते हैं इतना जोर से चिल्लाते पूरा हॉस्पिटल कांपता है, तो इतना दर्द होता है बोन को टच किया। तो प्रभुपाद को जब चमड़ी बोन को टच हो रहा था इतना दर्द होता है, तो डॉक्टर ने वैद्य ने बोला कि ये व्यक्ति कैसे सहन कर पा रहे, और सहन ही नहीं कर रहे, प्रभुपाद भागवतम भी दे रहे उस समय, अनुवाद भी कर रहे, तो मतलब उनका चेतना। इसलिए तो ये प्रभुपाद भी भीष्मदेव का उदाहरण सेट कर रहे हैं किस प्रकार से शरीर। तो भीष्मदेव का इतना तीर लगने के बाद भागवतम क्लास दे रहे, तो फिर उसके बाद बताते हैं भगवान को मैं अपना अपना विचार देना चाहता हूँ। तो और बोलते हैं मेरा जो प्रेम है आपके प्रति, मेरा आपके प्रति प्रेम होना चाहिए, ये मेरा इच्छा है। अभी फिर अर्जुन युधिष्ठिर को गुणगान करने के बाद फिर ये श्लोक आता है आज हमारे चर्चा करने, कि उन्होंने बोलना बंद कर दिया, फिर भगवान के ऊपर ध्यान करने लगे। भगवान का किस चीज के ऊपर ध्यान करते हैं, पहले त्रिभुवन कमलम तमाल अवर्णम, तो उनका गुणगान शुरू करते हैं, बोलते हैं भगवान एक्चुअली आप आते हैं, क्यों आते हैं, सात्वताम आपके भक्तों के साथ अच्छे से आदान प्रदान करने के लिए, उनके साथ टाइम बिताने के लिए, उसके लिए आते हैं। और आपका पुरुषावतार वो क्रिएशन मेंटेनेंस करता है, लेकिन आपका वो बड़ा इंपॉर्टेंट जॉब नहीं है, आपके भक्तों के साथ रहना आपका बड़ा जॉब है। और उसके बाद उनका फिर बताते हैं किस प्रकार से उनका जो ध्यान है, भीष्म देव बताते हैं। देखिए, इतना करने के बाद कोई व्यक्ति भगवान को ध्यान कर सकता है? मतलब पूरा दिन काम करने के बाद, एक्चुअली पूरा दिन नहीं, सुबह उठ के माला पकड़ के भगवान को ध्यान करना ही मुश्किल हो जाता है। दो मंत्र जपते ही हमारा मन बहुत जगह चला जाता है। तो मतलब कितना मुश्किल है भगवान को बैठ के, सिर्फ भगवान को ध्यान करना ही मुश्किल हो जाता है, तो बाकी सारा काम करते हुए भगवान को कैसे ध्यान कर सकते हैं? तो कोई भी कार्य करते हैं, वो सामाजिक कार्य करते हैं, देश के लिए करते हैं, कुछ अपने फल के लिए करते हैं, सहनशील होते हैं, अपने पर्सनल कंफर्ट्स के लिए, मुक्ति के लिए, वृद्धि के लिए, और कुटुंब के फीलिंग अफेक्शंस उसके लिए, और सारे जो कार्य करते हैं लोग करते हैं ये इंद्रिय भोग के लिए, तो उसमें भगवान को स्मरण करना बहुत मुश्किल होता है। तो भीष्म देव ने पूरा जीवन भर जो कार्य किया है, इतने सारे हजारों हजारों कार्य करने के समय भी उनका जो चेतना है भगवान के स्मरण में ही हुआ है, इसलिए मरते समय उनको भगवान का स्मरण करना मुश्किल नहीं था। क्योंकि जब हम जो कार्य करते हैं तो जो हमारा थॉट है, हमने पूरा हमारा जो थॉट है वही आता है। एक बार एक मिलिट्री के सोल्जर्स को लेके गए और एक ईंट का ढेर को दिखाया, बोला क्या समझ में आया आपको? उसने बोला, ईंट का ढेर को देख के बोला कि ये लोग ऑर्गेनाइज नहीं है, ऐसे ही ढेर फेंक दिया। दूसरे को बोले, ये ढेर को देख के क्या लग रहा है आपको? वो बोला, कोई बिल्डिंग बनाने का प्लान होगा। और तीसरे को बोला, क्या देख रहे? बोला, मैं लड़की देख रहा हूँ। बोला, क्यों? क्योंकि उसका चिंता हर समय वही है, कुछ भी देखेंगे उसी को देखते हैं। तो उसी प्रकार इष्ट देव स्फूर्ति, तो हम लोग जो चीज़ का स्मरण होता है जीवन भर, कुछ भी देखते हैं वही देखते हैं। क्योंकि भीष्म देव, कृष्ण उनके सामने हैं उनके मरते समय, लेकिन वो क्या देख रहे हैं? त्रिभुवन कमलम तमालवर्णम, वो देख रहे हैं किस प्रकार से कृष्ण, आप युद्ध भूमि में थे और आपका जो बाल है ये घोड़ों के चलने के वजह, उनका दौड़ने की वजह से धूल उठ रहा है, उसके वजह से आपके बाल में जो धूल लग रहा है उसका स्मरण कर रहे हैं। तो अभी किसी के धूल गिरता है तो बहुत गंदा होता है, लेकिन कृष्ण के बालों में जब धूल गिरता है बहुत ही सुंदर दिखते हैं, और जब सूरज का किरण उनके बालों पर गिरता है वो शाइन होता है। तो बोलते हैं कि कि जो सुंदरम किम असुंदरम, जो व्यक्ति सुंदर है उसके अंदर कुछ भी गंदा हो फिर भी सुंदर ही है। तो कृष्ण के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो सुंदर नहीं है। तो उनके बाल धूल गिरने के बाद भी बहुत सुंदर हो जाते हैं। तो जनरली इतना शैम्पू लगा के कुछ करके बालों को सुंदर दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कृष्ण का कितना कुछ भी हो सुंदर ही है। तो फिर देखते हैं कि आपके चेहरे पे जब आप रथ चला रहे थे तो पसीना था। अभी पसीना किसको आता है? जो बहुत परिश्रम करते हैं उनको पसीना आता है। तो अभी भगवान का तो दिव्य शरीर है, पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि अपने भक्त के लिए कष्ट कर रहे हैं। बोले, भगवान आपके भक्त के लिए आप कष्ट कर रहे हैं इसलिए आपको पसीना निकल रहा है। तो वो देख के भीष्मदेव बहुत खुश होते हैं कि आप अपने भक्त के लिए कितना कर रहे हैं। अभी कृष्ण उनके सामने हैं तो कृष्ण को डायरेक्ट कृष्ण ही बोलते हैं, उनको थर्ड पर्सन की तरह एड्रेस करते, विजय सके आप अर्जुन के फ्रेंड हो। तो क्यों? क्योंकि वो भाव ही भीष्म को अच्छा लगता है, मतलब उनका रस इस प्रकार से। आप क्योंकि अर्जुन कृष्ण को नहीं देख पाते युद्ध करते समय, लेकिन भीष्म कृष्ण को देख पाते हैं, तो उनको वो एक्चुअली दृश्य बहुत अच्छा लगता है। तो और जब पहले उनको क्या याद आता है कि आप अर्जुन का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करके आपने रथ बीच में लेके आया, आपने दोनों सेनाओं को देखा, देखते ही उनका प्रारब्ध कर्म चला गया, मतलब इनका टाइम आ गया जाने का, आपने सारे कर्म ले लिया और सारे लोग जो आपका दर्शन लेते हुए उन्होंने शरीर छोड़ा, सारे भगवत धाम चले गए। तो फिर उसके बाद जब अर्जुन माया के प्रभाव में आगे युद्ध नहीं करना चाहते तो अब आपने भगवद गीता को उपदेश दिया, लेकिन उससे भी बहुत बड़ा चीज किया आपने। क्या? जब मैं अर्जुन को मारने वाला था तो आप रथ से कूद गए और कूद के आपने अर्जुन को रक्षा करने के लिए, उस समय कुछ नहीं सोचा, आपको डर लगा कि मेरा भक्त का कुछ हो जाएगा, तो आपने तुरंत चक्र उठाया मुझे मारने के लिए। अभी किसी को मारना है तो कोई गदा लेना चाहिए, तलवार लेना चाहिए, तो कृष्ण ने क्या लिया, पहिया लिया एक रथ का। अभी किसको मारने के लिए, वो भीष्म को। जब उनके हाथ में कुछ हथियार थे तो बोलते हैं कुछ भगवान थोड़े इमोशनल हो गए होंगे इसलिए भूल गए किससे मारना चाहिए, तो भगवान कभी भूलते नहीं है। तो लेकिन भगवान बोले ठीक है, मुझे अस्त्र भी उठाना नहीं चाहिए लेकिन उठा भी ना चाहिए। जब वैसा भीष्म की तरफ दौड़ते हैं, विष्णु चक्रधर बोलते हैं कि ऐसा लगा कि कृष्ण अपने एक लवर की तरफ दौड़ रहे हैं, प्रेमिका की तरफ दौड़ रहे हैं, इस प्रकार से दौड़ते हैं। जब भीष्मदेव देखते हैं अभी इतना लड़ाई किया, इतना गुस्से में किसी को मारना है तो एक झापड़ मारने के लिए भी थोड़ा गुस्सा लगता है, और वो भी इतना जोर से मारो कि उसका खून निकल जाए और मारने तक मारो तो उतना गुस्सा चाहिए। लेकिन उनका स्मरण हर समय, कितना प्रेम से वो भगवान को ध्यान कर रहे थे उस समय भी, जब भगवान उस तरह दौड़ के आ रहे थे तो बोलते आपने अपना चादर नीचे फेंक दिया। तो चादर नीचे डालना मतलब वैदिक संस्कृति में बहुत ही मतलब असभ्य, मतलब इतना कल्चर नहीं है, अपना चादर नहीं उतारना चाहिए। तो बोलते अरे किस प्रकार से, सिर्फ भगवान के सामने निकाल के बांध के प्रणाम करना चाहिए, हर समय रखना चाहिए। तो भगवान ने उसको भी छोड़ दिया। तो बोलते मुझे कुछ परवाह नहीं है, अपने भक्त का रक्षा करना है। तो फिर जब दौड़ते हैं तो भीष्मदेव क्या देखते हैं, बोलते हैं भगवान अरे अभी तो मैंने कर दिया, विष्णु को लगा अभी तो मैंने अचीव कर लिया, मैं दिखा दिया थी भगवान को अस्त्र उठाना ही पड़ा। बोले ठीक है मैं रेडी हूं, आप आके मुझे मार दो। तो फिर लेकिन भीष्मदेव ने क्या देखा कि अर्जुन रथ से कूद गया और कृष्ण का पैर पकड़ते हैं, बोलते आप मत जाओ। अभी अर्जुन ने नहीं सोचा कि देखो किसके लिए जा रहे, कृष्ण मेरे लिए जा रहे, लेकिन अर्जुन गर्वित नहीं हुए। लेकिन क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपने बारे में नहीं सोचा, अर्जुन ने कृष्ण के बारे में सोचा। भगवान आपका भाव है कि शपथ है कि आप अस्त्र नहीं उठाएंगे इसलिए आप कुछ मत करो, और कृष्ण ने अपने शपथ के बारे में नहीं सोचा, कृष्ण ने अर्जुन के बारे में सोचा। तो ये प्रेम होता है, प्रेम मतलब एक दूसरे के बारे में नहीं, अपने बारे में नहीं सोच रहे, तो कृष्ण अर्जुन के बारे में, अर्जुन कृष्ण के बारे में, और भीष्म ये देख रहे हैं और बोल रहे भगवान आप कितने प्रेम करते हैं अपने भक्तों को। तो भीष्मदेव को ये दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने अपने भक्त के लिए इतना किया है, को एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। तो और मैंने और देख रहे हैं कि कृष्ण के शरीर से खून भी निकल रहा है, कृष्ण का शरीर अश्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम, उनके कुछ नस नहीं है, कृष्ण के हमारे जैसा वेन्स नहीं है एक्चुअली कृष्ण को, फिर खून कैसे निकल रहा है? क्योंकि भीष्मदेव का उनको रेसिप्रोकेट करने के लिए उनका खून निकल रहा है। उसके बाद भीष्मदेव गोपियों का गुणगान करते हैं, तो मतलब उनको बहुत बड़ा चीज भी पता है कि किसका हाईएस्ट भक्ति है भीष्मदेव को पता है। फिर बोलते हैं उसके बाद वो राजस्व सैक्रिफाइस में जब सहदेव बोलते हैं किसका सबसे पहले पूजा होना चाहिए, मतलब तो बोलते हैं कृष्ण है सबसे ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी, तो उसको जो संबोधन देते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं, वो भीष्मदेव करते हैं। बोलते हैं हाँ जो सहदेव ने बोला वही सही है। तो उस तरह से उन्होंने बहुत बड़ा सेवा किया कृष्ण को उस सिचुएशन में। और तो इतना उन्होंने अर्जुन का रक्षा किया है, उसके बाद अभी कृष्ण भीष्मदेव का गुणगान करते हैं किस प्रकार से वो मेरा स्मरण कर रहे हर सिचुएशन में। तो तो भीष्मदेव बहुत सारा चीज बोलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है गोपियों के बारे में जानते हैं, मतलब वो बोलते हैं किस प्रकार से आपने गोपियों को छोड़ के चले गए और उनका आप किस प्रकार से सेवा भाव है, मतलब हाईएस्ट रसा को भी भीष्मदेव जानते हैं। और उन्होंने विष्णु सहस्त्र नामम बोला है जो सबसे ऑथेंटिक, मतलब जो भी हमारा भगवान के अवतारों का सबसे अच्छा विवरण कोई अथॉरिटी है तो विष्णु सहस्त्र नामम है। तो अभी भी कोई अवतार है भगवान का बोलना है तो हम विष्णु सहस्त्र नाम बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सीक्रेट भीष्मदेव का क्या है कि गोपियों के भाव के बारे में जानते हैं, और दूसरा क्या है वो चैतन्य महाप्रभु के भी जानते हैं, इसलिए तो कोट करते हैं। सो संन्यास कृत चमच्छांत निष्ठा शांति परायणम हिरण्य वर्ण हेमांगो वरांग चंद्रांगति, मतलब भीष्मदेव महाप्रभु के बारे में भी जानते हैं इसलिए उन्होंने कोट किया उनके बारे में। तो हम उसका उदाहरण देते हैं कि मतलब किसी श्लोक बोल रहे हैं मतलब उनके बारे में जानने से ही वो बोल सकते हैं। तो उन्होंने ये अथॉरिटी है भीष्मदेव, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का भी उदाहरण दिया। तो उन उन तो फिर सारे स्मरण, तभी विष्णुदेव बोलते हैं मैं अपना शरीर छोड़ना चाहता हूँ। तो विष्णु चक्र ठाकुर कृष्ण की तरफ से पूछते हैं अभी क्यों छोड़ना चाहते हैं, बोलते हैं क्योंकि वो आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ही कारण है, आप नहीं है फिर भी आप ही कारण है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप द्वारका चले जाएंगे लेकिन मुझे जो दर्शन चाहिए वो अभी नहीं मिलने वाला है मुझे, क्योंकि युद्ध हो गया, मुझे आप अर्जुन के साथ युद्ध करते हुए ही दर्शन ही चाहिए, तो मैं जिधर आप युद्ध कर रहे हैं उधर जाऊंगा। तो कृष्ण बोलते क्या गारंटी आप उधर जाएंगे, बोलते हैं आपने असुरों को भी इतना मुक्ति दे दिया तो क्योंकि मैं उसी चीज को ध्यान कर रहा हूं तो 100% मुझे वही मिलने वाला है। तो हम जीवन भर किस चीज को स्मरण करते हैं वही हमको मिलने वाला है। तो हमको अभी पता कैसे चला गया कि मेरा नेक्स्ट लाइफ क्या है, अभी पता चल जाएगा हमको नेक्स्ट लाइफ। अभी मुझे मारा तो मुझे क्या स्मरण में आएगा, वही मेरा नेक्स्ट लाइफ है। मतलब हमको सेपरेटली सोचने में भगवान तब जाऊंगा, हम जाऊंगा या नहीं हमको पता है, क्योंकि अभी ये शरीर छोड़ दिया तो नेक्स्ट घर में जाएंगे तो कैसे जाएंगे, यही चेतना से जाएंगे। तो अभी चेतना क्या है वो डिसाइड कर रहा है नेक्स्ट लाइफ क्या है। तो नेक्स्ट लाइफ ऐसा कुछ, अब लोग सोचेंगे मैं मरते समय भगवान का ध्यान कर लूंगा, जब मैं बैठते समय कितना ध्यान हो रहा है उतना ही ध्यान है हमारा भगवान का, उससे ज्यादा नहीं है एक्चुअली। तो ज्यादा ज्यादा हमको इमेजिन करने का जरूरत नहीं, जप में कितना हमारा ध्यान है उतना ही ध्यान है, और मृत्यु के समय उतना भी ध्यान नहीं रहेगा। थोड़ा बीमारी हो गया तो पहला चीज क्या होता है, जप का क्वालिटी कम हो जाता है, बोलेंगे अच्छा होगा तब बैठ के अच्छा से जप करेंगे, अभी तो कुछ तो खत्म करना चाहिए, तो कैसे तो खत्म कर देते हैं। लेकिन भीष्मदेव बताते हैं कि किस सिचुएशन, हर सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन में भी मैंने भगवान का ध्यान किया, मतलब मैंने पूरा जीवन भर इतना प्रैक्टिस किया है। तो भीष्मदेव का जो प्रैक्टिस है वो प्रूव कब हुआ, जब उनको अपना शरीर छोड़ना था तब उनका प्रूव हुआ कि उन्होंने कितना प्रैक्टिस किया अपना भक्ति का। तो आज हमने चर्चा किया किस प्रकार से भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को कन्विंस करते हैं, और वो बोलते हैं कैसे काल सभी का कारण है और क्यों कृष्ण चाहते हैं कि भीष्मदेव पांडवों के व्यतिरिक्त में युद्ध करे, ताकि वो दिखाना चाहता है कितना भी बड़ा व्यक्ति हो भगवान के विरुद्ध में रहेंगे तो हार जाएंगे, और किस प्रकार से भीष्मदेव को कितना उनके जीवन में परीक्षाएं हुए फिर भी उन्होंने उस सिचुएशन में भी वो हताश नहीं हुआ और भगवान का स्मरण करते रहे। तो उसका कब निरूपण हुआ, जब अपना शरीर छोड़ रहे थे। तो इस सुंदर दृश्य को भीष्मदेव देखना चाहते हैं और हर समय उसी के ऊपर ध्यान कर रहे हो, बोले मेरा रस यही है वीर रस, तो वीर रस में ही आपको देखना चाहता हूं, और उसी में वो संतुष्ट थे। तो आज तो एक जब कुछ पैनल डिस्कशन, जब एक पैनल डिस्कशन है जिसमें मॉडरेटर भक्ति विनोद ठाकुर होंगे और उसके जो मेंबर्स नरोत्तम दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जीव गोस्वामी और वृंदावन दास ठाकुर रहेंगे। और टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा कि किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सबसे मर्सिफुल हैं। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना पर्सनल स्टोरी बोलेंगे, उनका खुद का लाइफ का भाई का स्टोरी, और जीव गोस्वामी अपने तत्व संदर्भ से और कुछ उपनिषद से वो कोट करेंगे। अब नरोत्तम दास ठाकुर को पूछेंगे कैसे नित्यानंद प्रभु स्पेशल हैं, तो ये गाना गाएंगे। तो हम लोग थोड़ा नरोत्तम दास ठाकुर का गुणगान करेंगे। नीताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाया जगत जुड़ा, हे नो नीता बीने भा, राधा कृष्ण पैते ना, दारा कोरी दारो नीताय पा, से संबंध नाही जरा, व्रत जन्मा गेलो तारा, से पशु बड़ो दूराचा, नीताई ना बोलिलो मुके, माजिलो संसार सुके, विद्या कुले की कोरी बेता, अहंकार मत्ता होया, नीताय पद पशारिया, असतेरा सत्य कोरी मानी, नीताईरा करुणा होबे, बजे राधा कृष्णा पावे, तारो नीता चरण दुखानी, नीताईरा चरण सत्या, ताहारा सेवक नित्या, नीताय पद सदा करो आशा, नरोतम बड़ो दुखी, নিতায় মর কর সুখী, রাকারঙ্গ চরণের পাশা, नरोत्तम दास ठाकुर की जय, भीष्म देव की जय, शील प्रभुपाद की जय, गंत्रा श्रीमद्भागवतम की जय।